ग्रहण करे। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवृषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथा सर्वगुणों प्रेतः कालः परम शोभनः श्री सुकवाच। अथ सर्वगुणों प्रेतः कालः परम शोभनः जरहेवा जन जन्मरक्षण संतक्ष ग्रह तारकम्। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जरहेवा जन जन्मरक्षण संतक्ष ग्रह तारकम्। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जरहेवा जन जन्मरक्षं संतक्ष ग्रह तारकम्।
स्वामी ने कहा, अतः भगवान के आविर्भाव के समय शर्व चारों को कूद फेंककर भौतिक गुणों से संपन्न काल उपयुक्त समय परम शोधना अत्यंत शुद्ध तथा सभी दृष्टियों से उपयुक्त जब एवं निश्चित रूप से अजन जन निरीक्षण रोहिणी नक्षत्र समूह शांत निरीक्षण सारे नक्षत्र शांत ग्रह तारक तथा ग्रह एवं तारे यथा अस्मित सारी दिशाएं प्रत्येक अत्यंत सुख तथा शांत प्रतीत गगन आकाश निर्मल उदय जिसमें सारे सुख नक्षत्र दृष्टिगोचर मही पृथ्वी मंगल भूष्ट जिससे अनेक नगर ग्राह गोचर छोड़ तथा खान सुख तथा निर्मल हो गए नद्य नदी प्रसन्न चल गया जल स्वच्छ हो गया रथ झीले या जलाश जलन प्रिय चारों को पवनों के खिलने से अत्यंत सुंदर बनने लगा कृष्ण अभी खुद समना स्वका पक्षी विशेषतया कोय तथा मधुमक्खियों का समूह मधुर ध्वनि कीर्तन करने लगा मानो भगवान की स्तुति कर रहे वनराज हरे वृक्ष की देखने में मनोहर लग रहे थे पवन बहने लगे वायु वायु मंगल सुखस्त उदय में सुहावन पुंज संभव से पूरी सूची के भूल से रहे अग्नि तथा यज्ञ अशुओं की अग्नियां त्रिजातियां ब्राह्मणों की शांत शांत तत्व वाह समित जलती मना से ब्राह्मणों के मन जो सबके सब वैष्णव भक्त असुर जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते शब्द पंच तथा अन्य वस्तुओं द्वारा बताए गए यार जन्म होने से अजन अजन भगवान विष्णु अनुवाद और तत्पक्षी अनुवाद तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव के शुभ समय सारा ब्रह्मांड संतोष सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे सारे निकल पाए सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र के अंदर अत्यंत प्रतीत होने लगे, निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगे और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुंडलियों से पूर्ण होकर अत्यंत सुंदर लगने लगे। फूल पशुओं से फूल एवं देखने में सामने लगने वाले विभिन्न पौधों पौधों कोयलों जैसे तथा हमें के खून देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे, निर्मल मंद वायु बढ़ने लगे जिसका स्पर्श और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे हुए ब्राह्मणों ने वैसे नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि की वायु से अभी जलित राखी हुई इसके भाव से जलने लगे। इस तरह जब भजना भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो ध्वंस जैसे असुरों तथा उसके सेवकों द्वारा सताए गए साधुओं तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगे और उसी समय स्वर्ग में उनकिया बदले बल। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जन्म तथा कर सभी दिख आपका समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता, जिसे अपने कुछ कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकृत्य की व्याख्या पिछले अध्याय में होती है, विश्वेच्छा से प्रकट होती है। जब भगवान के प्राकृत्य दर्शन में आ गए तो नक्षत्र शुद्ध होकर रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष पद भी प्रधान होता है। नक्षत्र अत्यंत शुद्ध माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी का जन्म विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न क्रमों की विभिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे क्रमों को अपने आप ऐसा ताल मिल बैठा इसका कुछ शुभ फल है। उस समय पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण ब्राह्मण तथा साधु शांत चित्त होकर भक्तों का कार्य शुभ भक्तों तथा ब्राह्मणों को सदा किंतु कृष्ण के आत्मभाव के शब्द ये भक्त तथा ब्राह्मण जो स्थान करेंगे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ मंगलार्थम सर्व गुणोपेतः सभी गुणों से संपन्न कालः समय परम शोभना परम सुशोभित जरही जब अजन जन्मक्षम अजन अजन्मा भगवान से जन्म जिसका जन्म हुआ है अर्थात ब्रह्मा ऋक्षम उनका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र शांतक्ष ग्रह तारकम सभी ग्रह नक्षत्र और तारे बिल्कुल सौम्य हो रहे थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के आविर्भाव के समय का वर्णन कर रहे हैं। काल परम शोभन हो गया। काल प्रायः बहुत कठोर माना जाता है, ऐसे काल ही सृष्टि करता है, काल ही जगत का पालन करता है, लेकिन काल संहार भी कर देता है। तो जो काल की विशेषता है संहार करने की, वही काल के रूप में वर्णन किया जाता है। तो काल बहुत भयानक होता है। जैसे किसी के जन्म का समय आ गया है कहा जाए, लेकिन प्रायः कहा जाता है मृत्यु को ही काल, उसका काल आ गया। तो काल अपने आप में बहुत भयंकर चीज है, लेकिन काल के अंदर भगवान आ रहे हैं इसलिए बहुत सुंदर हो गया है। काल भयावह होता है, भगवान ने स्वयं कहा। जब अर्जुन ने देखा भगवान का विश्व रूप तो उनको भय हो गया, बहुत भय हो गया। भगवान के विकराल मुख को देख करके और विकराल दांत को और मुख के भीतर सारे विश्व को वीरों को दबाते हुए उन्होंने देखा भगवान, तो इतना घबरा गए। पूछते हैं आख्या ही में को भगवान उग्र हो, आप बताइए आप कौन हैं? मैं अभी भूल गए कि हमारा सखा है। आख्या ही मुझको बताइए, भगवान उग्र रूपो कह, आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं? तो उस समय भगवान ने अपना इमीडिएट परिचय दिया है, काल कालोस्मि, मैं काल हूँ। अर्जुन ने पूछा कि आप इस समय क्या करना चाहते हैं? नहीं जाने तव प्रवृत्ति, मैं आपकी चेष्टा को समझ नहीं रहा हूँ, आप क्या करना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्त, मैं काल हूँ और लोक का नाश करने पर पड़ा हूँ। अर्जुन को ये कह रहे हैं रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, अब तुम्हारे बिना भी कोई बचेगा नहीं, तुम लड़ो या मत लड़ो मैं सबको बांट डालूंगा। उसी भयानक भाषा में भगवान बोल रहे हैं कालोस्मि मैं काल हूँ, लोक क्षयकृत प्रवृत्त और जगत का लोगों का नाश करने पर पड़ा हूँ, तुम नहीं लड़ोगे फिर भी ये सब वीर मारे जाएंगे। मया वैते निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सभी पहले ही मार दिए गए हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ निमित्त मात्रम भव सभ्य साथी, इसलिए अब निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो। तो भगवान वहाँ पर अपने को कहते हैं मैं काल हूँ। तो काल का क्या काम है? लोक क्षयकृत प्रवृत्त, मैं लोक का नाश करने पर पड़ा हूँ। तो जनरली काल को बहुत भयानक समझा जाता है, लेकिन भगवान काल के अंदर आ रहे हैं। कैसा काल? काल के बहुत छोटी इकाई के अंदर आ रहे हैं। जो भगवान काल और देश से परे हैं कभी काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वे काल के भीतर आ रहे हैं। सबसे बड़ी इकाई है काल की कल्प, महाकल्प। जो महाकल्प कहते हैं जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उनके जन्म के बाद जब तक उनकी आयु रहती है उस समय को महाकल्प कहा जाता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक दिन सहस्र चतुर्युग का होता है, 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कली, इतना बिकता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और उतने अवधि में 14 मनु बदलते हैं, मनु महाराज का शासन होता है। एक मनु महाराज का शासन काल लगभग 71 चतुर्युग रहता है। या कभी 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 ज्यादा भी होता है। तो जब भगवान अवतार ले रहे थे लिए उस समय वैवस्वत मन्वंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा था, इस समय चल रहा है। कलयुग आने से पहले जब द्वापर था तो वैवस्वत मन्वंतर के 28वें चतुर्युगी में द्वापर काल में श्री भगवान आए, और उस द्वापर में उस संवत्सर जो था उसमें भाद्र महीना था, भादों का महीना, और उसमें भी अष्टमी तिथि, और उसके अंदर भी उस अष्टमी तिथि के अंदर भी रात थी, रात में भी आधी रात। इस तरह श्री कृष्ण आधी रात के समय प्रकट हुए तो भगवान काल के अधीन अपने को कर रहे हैं। काल इसीलिए परम सुंदर हो गया है। बहुत प्रसिद्ध शब्द है अकाल। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि भगवान अकाल पुरुष हैं, पर उन्होंने ही अपने पद में भगवान की रासलीला का वर्णन किया है, बहुत सुंदर। और बीच में कह देते हैं कि यही अकाल पुरुष रास कर रहे हैं, तो प्रकट है कि भगवान कृष्ण ही अकाल पुरुष हैं। अकाल काल की सीमा से परे ऐसे अकाल पुरुष जन्माष्टमी को प्रकट हुए। इस तरह काल के अधीन होने से काल बहुत प्रसन्न है कि हमारे पेट में भगवान आए हैं, प्रकट हुए। काल के अंदर भगवान प्रकट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं भगवान काल नहीं, काल के परे हैं। काल के परे हैं लेकिन काल के अंदर आए। भादो तिथि की अष्टमी रात को आए। एक राजनीतिक पार्टी भी है पंजाब में, उनको अकाली दल कहते हैं। अकाल से अकाली शब्द बना है, अकाल पुरुष भगवान, और उस नाम से उस दल का नाम रखा है अकाली दल। पर प्रायः सभी इसी धारणा में है कि इस अकाल पुरुष का मतलब है जो काल के सीमा से परे हैं, अवधि से परे हैं, और उस कारण से ये मान लेते हैं उनका कभी जन्म नहीं है, जन्म नहीं है और कोई अंग नहीं है, शरीर नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं जरहे वा जन जन लक्षण अजन भगवान है, वो भी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा रहते हुए ही यदि जन्म लिए, अजन से जिनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा जी जो ब्रह्मा जी के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में श्री भगवान जन्म लिए, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान का अजन्मापना नष्ट हो गया, जो जन्म ले लिए। भगवान स्वयं कहते हैं अजोपी सन अव्यय आत्मा, मैं अज हूँ और अव्यय आत्मा हूँ, रहता हूँ, और फिर भी अपनी प्रकृति को अधिष्ठाया, अपने अधीन रह करके, या उसमें अस्थित हो करके, संभवामी आत्ममाय, अपनी इच्छा से प्रकट होता है। अज हैं, अव्यय आत्मा हैं, फिर भी वे प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इस संसार में किसी का जन्म होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता है, उसके कर्मों के अनुसार हिसाब करके जन्म दिया जाता है। हम परीक्षा से जन्म लिए हैं, अपनी इच्छा से नहीं, माया के अधीन है, और भगवान मायाधीश हैं, अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए हैं, तो जब भगवान जन्म लेना चाहे, इस भौतिक जगत में प्रकट होना चाहे, उस अवसर पर इस प्रकृति की क्या दशा हो गई, कितनी सुंदर हो गई है, काल बहुत शुभ हो गया, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यहीं से चालू करते हैं, शांताक्ष ग्रह तारक, सभी ग्रह नक्षत्र और तारे जो वास्तव में बड़े बड़े लोक हैं, ये सभी शांत हो गए, इनकी गति इनकी दृष्टि उग्र नहीं रही, वे किसी भी ग्रह या नक्षत्र के गति को रोक नहीं रहे थे, प्रसन्न थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी लोकों में जितने प्राणी थे सभी सौम्य हो गए, शांत हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्योतिष के अनुसार एक ग्रह नक्षत्र आदि यदि अपने ऑर्बिट पर रहते हैं, वक्र चाल नहीं चलते हैं, अपना ट्रैक नहीं बदलते हैं, शांत रहते हैं, तो ये बड़ी शुभ में बेला मानी जाती है, ये बहुत शुभ है, समय आ गया, भगवान जब प्रकट हो रहे थे। जर ही शब्द कर रहे हैं, जब सभी ग्रह नक्षत्र तारे सौम्य थे, शांत थे, तब भगवान इस जगत में आए। भगवान के आने पर सबकी शोभा बढ़ गई, दिशा प्रसेदु, सारी दिशाएं प्रसन्नता से भर गई। दिशाएं जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और चारों कोने ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं, सर्वत्र आनंद छा गया। किसी भी दिशा से कोई हाहाकार या कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता, केवल आनंद ही आनंद भर गया। दिशा प्रसिद्ध गगनम निर्मलोडु गणोदय, और आकाश निर्मल तारों से भर गए, सभी तारे उग गए, साफ दिखाई पड़ रहे, आकाश में कोई धूल नहीं थी और कोई मल नहीं था, निर्मल गगनम, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गए, तारे उग गए। ऐसा लगता था कि प्रकृति ने भगवान के स्वागत के लिए चंदोवा तान दिया है, बितान तान दिया। सारी प्रकृति जो भगवान की शक्ति है आनंद से भर गए, क्योंकि भगवान प्रकृति के अंदर आ रहे हैं अपने अप्राकृत धाम से, वैकुंठ से इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, इसीलिए प्रकृति की शोभा बढ़ गई। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोड गणोदय मही मंगल भूष्ट, पूरा ग्राम ब्रजाकर, और मही पृथ्वी सब प्रकार के मंगल से सज गई, पृथ्वी वैसी सुंदरी बन गई जैसे कोई वासक सज्जा नायिका सुशोभित होती है। अपने प्रियतम से मिलने के लिए पृथ्वी अपने को सजा करके तैयार हो गई, अपने प्रियतम भगवान से मिलने के लिए। वासक सज्जा उस नायिका को कहते हैं जो अपने प्रियतम से, पति से मिलने के लिए अपने देह को और घर को सजाती है, देह को अलंकार से और घर को अनेक तरह से साफ सुथरा करके सजाती है, उसको वासक सज्जा कहते हैं। तो यह पृथ्वी बहुत प्रसन्न है कि इस बार भगवान मुझ पर बहुत दिन तक रहेंगे और अपने चरणों से मुझे कृतार्थ करेंगे। भगवान पृथ्वी का भार तो दूर करेंगे, उसके अतिरिक्त अपने चरण चिन्हों से पृथ्वी को अलंकृत करेंगे। और चरण में चरण त्राण पद त्राण भी नहीं लगाएंगे, नंगे पाव इस पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। इसलिए पृथ्वी को बहुत आनंद हो रहा है कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करूंगा। पूरा ग्राम ब्रजा करा, पृथ्वी पर जो भी नगर हैं, गांव और गोपों की बस्तियां, गौओं के रहने के स्थान आकरा और रत्नों की उत्पत्ति के स्थान, वे सब अपना सौंदर्य प्रकट किए। सब जगह वैभव, सब जगह संपत्ति, सुंदरता निखर गई। नगर भी बहुत प्रसन्न थे कि भगवान हमारे में जन्म लेंगे, उन्होंने मथुरा को अपनी जन्मभूमि बनाया। इसलिए इस भावी सौभाग्य को याद करके सभी नगर प्रसन्न हुए और ग्राम भी प्रसन्न है कि भगवान हम में वास करेंगे, जैसे नंद ग्राम। और ब्रज जहाँ गौएं रहती हैं, चरती हैं, गोपों का आवास, इसको तो भगवान ने अतिशय धन्य किया। ते सभी प्रसन्न हैं। रत्नों के जो खाने हैं वे अपने रत्नों को प्रकट कर दें, पृथ्वी पर सर्वत्र दिखाई पड़ता था। रत्न को खोदना नहीं, रत्न अपने आप प्रकट हो गए। रत्न जैसे हीरा या स्वर्ण, ये सब अपने आप प्रकट हो गए। ये ऐसे लग रहा था कि पृथ्वी मंगल सूत्र पहन रही है, अपने स्वामी का सत्कार करने के लिए। इसीलिए मुनीश्वर श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला मही मंगल भूष्टर, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अर्थात लगता था कि अब इसके विवाह का अवसर आ गया। भगवान की यह प्रिया है पृथ्वी। तो भगवान बहुत दिन तक काल तक अपने धाम में रहे, अब बहुत दिन के बाद आएंगे इस पृथ्वी पर, तो ये अपने भावी सुख की याद करके बहुत सुखी हो गई है, बहुत आनंद में है। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियाँ स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भर गई। यद्यपि यह बरसात का महीना है, भादो का महीना है, जल में मिट्टी मिल जाता है, जल गंदा हो जाता है, लेकिन भादो के महीने में भी अष्टमी को सब नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। नदियों को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस अवतार में श्री भगवान हमें भी अपनी पटरानी बनाएंगे। भगवान की आठ प्रमुख पत्नियों में एक कालिंदी जी थी, जमुना है, तो इस संबंध से नदियाँ प्रसन्न जल से, स्वच्छ जल से भर गई। केवल इसी चिंतन से कि भगवान हमें अपनी प्रिया बनाएंगे, हमें विहार करेंगे, जलकेली करेंगे, रास लीला आदि करके थक जाएंगे, तो हमने जल विहार करके सुखी होंगे। भगवान कृष्ण की अधिकांश लीलाएं जमुना जी के किनारे हुई हैं। जमुना जी के पश्चिमी तट पर सात वन है और पूर्वी तट पर पांच, 12 वन बड़े प्रसिद्ध हैं। हम लोग गाते हैं द्वादश सत्कानन। जमुना जी के पूर्व और पश्चिम तट पर ये द्वादश वन हैं। इन वनों में भगवान गोचारण किए, सखाओं के साथ विहार किए और अपनी प्रिया गोपी जनों के साथ बहुत प्रकार से लीला किए, वन विहार किए और रास विहार किए। तो ये प्रदेश जमुना जी का तट परम पावन है। परम धन्य है। नदियों को बहुत प्रसन्नता हो रही। कालिंद पर्वत की पुत्री कालिंदी भगवान की प्रिया बनी, ऐसी कथा है। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, द्रौपदी जी का विवाह हुआ और विवाह करके अर्जुन लौटे इंद्रप्रस्थ, तो भगवान भी उनके साथ थे। तो वहाँ एक दिन वे रथ पर निकले अर्जुन के साथ, तो जमुना के किनारे उन्होंने देखा एक अतिशय सुंदरी कन्या तपस्या कर रही। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाकर पूछो कौन है, क्या चाहते। तो अर्जुन जा कर के पूछे, आप कौन हैं? तो उस कालिंदी ने बताया कि मैं कलिंद पर्वत की पुत्री हूँ। कलिंद पर्वत ये हिमालय में है। तो आप क्या करें? तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनूं, वे मेरा पाणी ग्रहण करें। तो श्री भगवान ने फिर आज्ञा दिया अर्जुन को, ठीक है लाइए उनको। तो रथ पर बैठा करके इंद्रप्रस्थ लाए और बाद में भगवान ने द्वारका भेज दिया। अब द्वारका में ही विवाह हुआ। तो इंद्रप्रस्थ में भगवान रह रहे थे, वहीं रहते हुए उन्होंने अर्जुन की सहायता के खांडव वन का दाह किया। खांडव वन एक ऐसा वन था जो सूख चुका था। तो उसको खाने की इच्छा हुई अग्निदेव को। अग्निदेव लगातार 12 वर्ष तक, कोई कोई कहते हैं 100 वर्ष तक यज्ञ में घी पीने से रोगी हो गए थे, मंदाग्नि हो गई थी। इतनी घी की आहुति दी गई थी यज्ञों में कि उनका पाचन बिगड़ गया था। तो वे सूखा खाना चाहते थे, घी नहीं। उनकी इच्छा थी कि इस खांडव वन को जलाऊं। जब किसी को ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो उसको सूखा भोजन करना चाहिए। तो अर्जुन उस वन को जलाए, इंद्र वर्षा करके रोक रहे थे, लेकिन अर्जुन इंद्र को परास्त करके और जला दिया। उसी वन में एक माय नामक दैत्य रहता था, उसको बचाया अर्जुन ने। जब वन जलने लगा तो भागा बाहर वन से, तो इंद्र उसको मारना चाहते थे। तब अर्जुन बचाए, इंद्र की शक्ति को आहत कर दिया उन्होंने। भगवान की सहायता से इंद्र का वज्र स्तंभित कर दिया और मय की रक्षा किया। उसी मय दानव ने महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बहुत सुंदर सभा भवन बनाया। उसी में राजसूय यज्ञ किया गया था। जिस सभा में दुर्योधन को भ्रम हो गया, स्थल को जमीन जल समझ लिया और जल को स्थल, तो कालिंदी को इस तरह भगवान ने प्राप्त किया था। तो इस संबंध को जोड़ करके नदियां बहुत प्रसन्न है। भगवान के आने पर वे अपने आप सुंदर जल से भर गए। यह उपाय है, किसी नदी को यदि शुद्ध करना है तो भगवान को लाना चाहिए। उनका यह समाचार मिलते हैं कि भगवान आ रहे हैं, ये अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आजकल बहुत चिंता लोग कर रहे हैं गंगा जी को शुद्ध करने की, यमुना जी को शुद्ध करने की, लेकिन भगवान को लाना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय यही, भगवान आएंगे अपने नाम के रूप में, नाम कीर्तन सब जगह हो, तो इससे सबकी शुद्धि हो जाएगी, सबको आनंद मिलेगा। हरदा जलद्वस लिया, और जितने जलाशय थे सरोवर वे सब कमलों से भर गए। जलरुह श्रिया, कमल गह गह खिल गए रात्रि में भी, यद्यपि वो रात्रि का समय था उस समय कमल नहीं खिलते हैं, कमल दिन में खिलते हैं सूर्य के प्रकाश में, लेकिन भगवान के आगमन के समय सभी सरोवर कमल से भर गए। द्विजाति कुल सन्नाद स्तबका वनराज, और वनों में जितने भी वृक्ष थे उन वृक्षों पर रात के समय ही पक्षी बोलने लगे, कोयल उकने लगे, और भौंरे गुनगुनाने लगे। सभी वृक्षों में अस्तबक लग गए। अस्तबक में तो फूल और पत्ते, फूलों के गुच्छों को अस्तबक कहते। अपने आप सभी में, सब में संपत्ति भर गई। वनराज समस्त वृक्ष फूल और पत्तों से भर गए, और उन वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, भौरे गुनगुनाने लगे। सन्नाद सुखदेव कहते हैं सम्यक नाद, उन वृक्षों पर उन सरोवरों में मधुर ध्वनि होने लगी। ऐसा लगता था कि भगवान के आगमन पर ये पक्षी और भंवरे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गवो वायु सुख स्पर्श, और वायु मंद गति से चलने लगा। वायु एक देवता है, तो पवन बहुत सुंदर गति से बहने लगा, पूर्ण गंध हो रहा, और उस वायु में बहुत दिव्य गंध भर गई, सुवासित वायु और शुचि वायु। वायु में कोई धूली आदि नहीं रह गया, शुचि और पूर्ण गंध, बहुत सुंदर गंध। वायु को बहुत प्रसन्नता है कि भगवान आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि पहली बार जब भगवान आए थे यहाँ श्री राम के रूप में, तो मेरा बेटा बहुत सेवा किया हनुमान, अब इस बार हमको स्वयं ही सेवा करनी है। तो पवन सोचने लगा, तो वो सोचा कि पवन पुत्र तो बाजी मार लिया, बेटा होकर के भगवान की सेवा किया खूब, इस बार मुझे चुकना नहीं है, मुझे स्वयं सेवा करनी। विशेष करके जब श्री भगवान सखाओं के साथ गोचारण करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे, थक जाएंगे और रास विहार में थक जाएंगे, तो उस समय मैं उनके अंगों का स्वेद दूर करूंगा, हवा अपने आप सुंदर गति से बह कर, तो कैसे बहूंगा, कैसे मैं भगवान के अंगों से पसीना सोखूंगा, इसका अभी से अभ्यास कर रहा हरि सूर्य जी सब भाव कहे, वायु अभ्यास कर रहा है, कैसी हवा होनी चाहिए, पुण्य गंध हुआ जिसमें सुंदर गंध हो और स्वच्छ वायु और गति मंद, ऐसे सेवा, ऐसे मैं सेवा करूँगा। वायु ने इसीलिए अभी से अभ्यास ट्रेनिंग क्या चालू किया, धीर गति से बह रहा था, धीर समीरे जमुना तीरे, सुख स्पर्श का ही अर्थ है, सुख स्पर्श, वायु यदि तेज चलती है तो स्पर्श सुखद नहीं होता, इसीलिए मंद गति से बहना लगा, सुख स्पर्श, जिसका स्पर्श सुख देता है और गंध से भरा हुआ वायु, फूल खिले हैं, फूलों के सुगंध को लेकर के वायु बह रहा है, तो उसकी इच्छा है कि मैं भगवान को सुगंधित वायु दे करके सेवा करूँ। वो वायु सुख स्पर्श, सुख स्पर्श हवा वायु बहने लगा और पूर्ण गंध हुआ, जो ओरिजिनल मूल गंध को लेकर के बह रहा था। यहाँ पुण्य का अर्थ है मूल, भगवान ने गीता में कहा है पूर्ण गंध पृथ्व्याम च, मैं पृथ्वी में मूल गंध हूँ, पृथ्वी में बहुत शुद्ध गंध भरी हुई है, जो भी गंध है सुगंध है पृथ्वी से ही निकलती है, तो वायु